जनाब मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब कहते हैं कि ज़माना बेसत की इब्तिदा में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का अपने ईमान को पोशीदा रखना और कुफ़ार के सामने खुलकर अपने अकीदे का इजहार न करना इंतहाई फ़िरासत और मौका शनासी है। अगर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ऐलान रिसालत के साथ ही इस्लाम का ऐलान ख़ुद भी कर देते तो कुफ़ार कुरैश ने जिस तरह रसूल अल्लाह के ख़िलाफ़ ऐलानिया मुहाज़ क़ायम कर लिया था, इसी तरह हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की दुश्मनी पर भी खुलकर कुफ्फारे कुरैश उतर आते और इसका लाजमी नतीजा ये होता कि जिस तूफ़ान मुखालफत को हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने तदब्बुर और तर्ज अमल से रोके हुए थे नहीं रोक सकते थे, कुरैश को अपना हरीफ बनाकर उस नहज पर नुसरत नहीं कर सकते थे जिस नहज पर उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत की। अगरचे कुफ़ार से ये बात छुपी हुई नहीं थी कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम हर मौके पर पैगंबर इस्लाम का अपने भतीजे का साथ देते हैं जिसकी वजह से ही इस्लाम की आवाज़ उभर रही है, मगर उनके पास कोई जवाज़ ना था कि वह हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से उलझते और उन्हें अपना हरीफ ठहराते। लिहाजा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की इस मुदब्बिराना रविश का नतीजा ये हुआ कि जनाब अबू तालिब को कुफ़ार को समझाने बुझाने और उन्हें इस्लाम की खूबियों से आगाह करने के मौके मिलते रहे, जिससे हक़ पसंद अफराद इस्लाम की तरफ खींचते और पैगंबर के हिदायत आफरीन कलमात सुनते। अगर अबू तालिब अलैहिस्सलाम ये तरीक़ा इख्तियार ना करते तो उस कुफर परवर फ़िज़ा में, जबकि कुरैश अपनी कुदरत और ताकत के बलबूते पर हक़ को दबाने और इस्लाम को कुचलने पर तुले हुए थे, कभी इस्लाम को बढ़ने का मौका ना मिलता। बिलाशुबा कुरैश की दुश्मनाना कार्रवाइयाँ और मुखालफत के बावजूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग इस्लाम का जो मौका मिला वो अबू तालिब अलैहिस्सलाम की हिमायत और उनके मुदब्बिराना हकीमाना रविश की बदौलत मिला। ये हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की कोशिशों का नतीजा है कि इस्लाम का चिराग कुफर की तेज़ आंधियों के थपेड़ों से महफूज रहा। अब उन बयानात का जिक्र करेंगे जो दूसरे मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा वगैरह के हैं कि वो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं। फ़िरक़ाए मोतज़िला के मशहूर आलिम इब्ने अबिल हदीद ने ईमान अबू तालिब अलैहिस्सलाम के मुतालिक खामोशी अख्तियार करने के बावजूद उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए कहा है कि अगर अबू तालिब अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्जंद अली अलैहिस्सलाम ना होते तो इस्लाम कभी अपने पैरों पर जमकर खड़ा ना होता, इस्लाम बाकी नहीं रहता। इनमें से एक ने यानी अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह की मक्के में हिमायत और पुश्त पनाही की और दूसरे यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मदीने में अपनी जान को ख़तरे में डाला। क्या कहना उसका जिसने हिदायत का फतह बाब किया और क्या कहना उसका जिस पर बुज़ुर्गियों का खात्मा हुआ। वो कहते हैं कि अगर अबू तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमात ना होती तो इस्लाम का कोई रुकन भी कायम नहीं रह सकता था और किसी जाहिल की बेहुदा गोई और वाकिफ़ हाल की आमदन चश्मपोशी से अबू तालिब अलैहिस्सलाम की अज़मत व बुज़ुर्गी कम नहीं हो सकती। यानी हकीक़त से बाखबर होने के बावजूद भी अगर कोई जानबूझकर चश्मपोशी करे तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की अज़मत बुज़ुर्गी कम नहीं हो सकती है। वो कहते हैं कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम ही वो इंसान कबीर हैं जिन्होंने रसूल अल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ किया, कुफ़ार व मुशरिकीन के शर से महफूज रखा और फिर रसूल अल्लाह की खातिर ज़हमतें बर्दाश्त की। चुनाची रिवायत है, वो बयान कर रहे हैं कि रिवायत है कि जब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया तो रसूल अल्लाह पर वही नाजिल हुई कि अब मक्का छोड़ दीजिए कि आपका मददगार दुनिया से रुख्सत हो गया है। अबू तालिब अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कुरैश ने नबी करीम को अज़ियतें देना शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि नबी को वतन छोड़कर हिजरत करना पड़ी। अबू तालिब अलैहिस्सलाम उस शख्सियत का नाम है जिनके बारे में सीरत का मुतालिया करने वाला जानता है कि अगर वो ना होते तो इस्लाम कोई काबिले ज़िक्र चीज़ ना होता। यह अल्लामा इब्ने अबिल हदीद का बयान है। वो कह रहे हैं कि अब अगर कोई शख्स ये एतराज़ करे कि ये तारीफ़ खिलाफ़ हकीक़त है इसलिए कि खुदा ने तरवीज दीन की जिम्मेदारी खुद ली है चाहे अबू तालिब अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहें या ना रहें, तो वो कहते हैं कि मैं जवाब दूंगा कि फिर रसूल अल्लाह की मदा व सना भी नाऊज़ु बिल्लाह बेकार है और ये कहना भी गलत है कि रसूल अल्लाह ने लोगों को जलालत से निकाला, जहालत से बचाया और आपका मुसलमानों पर कोई हक है, या अगर आप ना होते तो ज़मीन पर कोई खुदा परस्त ना होता, इसलिए कि ये तमाम बातें भी अल्लाह की तरफ से हुई हैं। फिर कहते हैं कि अगर कोई ये कहे कि रसूल अल्लाह की मदा व सना इसलिए की जाती है कि अल्लाह ने अपने अफ़ाल को उनके हाथों अंजाम दिया, अपने खैर व बरकात के लिए रसूल अल्लाह को वसीला वास्ता करार दिया है, तो मैं बेआईन ही यही बात अबू तालिब अलैहिस्सलाम के लिए कहूँगा। अल्लामा अब्दुल्लाह अलखनीज़ी ने अल्लामा इब्ने अबिल हदीद के इस बयान को तहरीर करने के बाद ये वजाहत की है कि इब्ने अबिल हदीद के ये बयानात उस खुतबे की शरह पर हैं जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जंगे सिफीन से वापसी पर इरशाद फरमाया था। ये अमर इंतहाई ताज्जुब अंगेज़ है कि एक तरफ तो ये एतराफ़ किया जाता है कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जांबाजियों के नतीजे में इस्लाम की आवाज़ बुलंद हुई और उन्होंने पूरे सबात इस्तकलाल के साथ ज़िंदगी का तवील अरसा नबी की हिमायत और नुसरत में गुजारा, और दूसरी तरफ उनके कुफ़्र पे जोर दिया जाता है और उनकी तमाम खिदमात को बेअसर बनाने की कोशिशें की जाती हैं। और ये कोशिशें उन लोगों की तरफ से होती हैं जो कमज़ोर से कमज़ोर क़राइन व शवाहिद को ईमान के साबित होने के लिए काफ़ी समझते हैं। जिन लोगों ने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को नाउज़ु बिल्ला काफिर साबित करने की कोशिश की, तो ये सियासी जज्बे के अलावा बास तासुबात की बिना पर भी है, क्योंकि पैगंबर के बड़े असाब जो कि बाद में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सियासी रकीब बने, आम तौर पर पहले बुत परस्त थे। सिर्फ हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे जो कि सबका बुत परस्ती नहीं रखते थे और बचपन से पैगंबर के मकतब में परवरिश पाई थी। अबुल किराम अब्दुस्सलाम इब्ने मोहम्मद कहते हैं कि आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम इस अमर पर मुत्तफिक हैं कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुसलमान इस दुनिया से गए, और जो बात अहले बैत के मसलक के ख़िलाफ़ हो इस्लाम में गैर मोतबिर है। और अब बयान करेंगे तज़किरतुल ख़वास के मौलिफ इब्ने जौज़ी का बयान कि उन्होंने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए पहले अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इरशादात नकल किए, उसके बाद ख़ुद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के कारहाए नुमाया बयान करते हैं और आखिर में तहरीर करते हैं कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के अहले जन्नत होने में कोई शक नहीं, इसलिए कि इसके दलाइल और शवाहिद हद से बाहर हैं। नबी की नुसरत में उनका ख़ास अहतमाम, कुफ़ार व मुशरिकीन से दिफा करने में मखसूस इंतज़ाम, और नबी का उनकी वफ़ात पर गिरिया और पूरे साल को आमुल हुज़्न करार देना, उनके लिए दुआए रहमत और इस्तग़फ़ार करना और एक मुद्दत तक दुआए खैर से याद करते रहना, ये बातें मेरे दावे को साबित करने के लिए काफ़ी हैं। अल्लामा इब्ने जौज़ी का ये बयान है। इसके बाद उन्होंने आइम्मा के अक़वाल और हज़रत अबू तालिब के अशार और इरशादात से इस्तदलाल करते हुए बयान किया कि किसी मौर्रिख ने आज तक हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर यह एतराज़ नहीं किया कि आपके वालिद कुफ़ार में से थे, हालांकि माविया, अमर आस, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, मरवान जैसे दुश्मन मौजूद थे जिन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की कोई कसर नहीं छोड़ी, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम बराबर उनके आबा व अजदाद का तज़किरा फरमा के उनके कुफ़्र को बयान करते थे। हकीकत में मौलिफ इब्ने जौज़ी के कलमात एक मंतकी इस्तदलाल की हैसियत रखते हैं, क्यों कर मुमकिन है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उन दुश्मनों के आबा व अजदाद की हकीकत बयान करें, उनके कुफ्र को बयान करें, और वो पलट कर जवाब ना दें। अगर उन दुश्मनान दीन को अबू तालिब अलैहिस्सलाम के इस्लाम में ज़र्रा बराबर शक होता तो वो लोग जो मौलाए कायनात पर तोहमतें लगाने से बाज नहीं आते थे, वो भला कैसे खामोश रहते। उन लोगों की खामोशी इस बात का वाज़े सबूत है कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम का इस्लाम दुश्मनों की नज़र में वाज़े था। इंतहा यह है कि जाहिद जैसे इंसान ने भी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र अपने रिसाला उस्मानिया में करते हुए ये कहा है, वो मजबूर होगा ये कहने पर कि कहते हैं कि क्या तुझे नहीं मालूम कि कुरैश बल्कि तमाम अहले मक्का में से किसी को नबी को अज़ियत देने की ज़रूरत, किसी को भी नबी को अज़ियत देने की ज़रूरत उस वक्त तक नहीं हुई जब तक अबू तालिब अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे। अल्लामा सुयूती ने नबी के आबा व अजदाद के ईमान के बारे में तहरीर किया कि उन्हें मुसलमान तस्लीम करना ज़रूरी है, इसलिए कि वालदैन की बदनामी से औलाद बदनाम हो जाती है। हकीकत अमर यही है कि अगर किसी पस्त तबके के इंसान के यहाँ कोई बाशरफ औलाद पैदा हो जाए तो अकदार व मफाहीम से ना आशना आवाम उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं होते और उनका हिसाब ख़ानदानी अजमतों से होता है। इसका मतलब ये है कि अगर खुदा का मकसद ये है कि तमाम आलम को किसी इंसान के सामने झुका दिया जाए, तो तो फिर ऐसे इंसान को ऐसे बाशरफ घराने में पैदा करेगा जिस घराने की शराफत उस इंसान की अजमत के लिए साजगार हो, नूरे नबुवत के लिए जिस ज़र्फ़ का इंतखाब किया जाए, क्या वो शिर्क व नजासत से आलूदा हो सकता है? हरगिज़ नहीं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी, खुदाया मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से महफूज रखना। तमाम उलमाए शिया और अहले सुन्नत के बाज़ बुज़ुर्ग उलमा ने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को मोमिन और अहले इस्लाम में से बयान किया। इस्लाम की बुनियादी किताबों में भी इस मौजू के बहुत से शवाहिद मिलते हैं, जिनके मुताले से ताज्जुब होता है कि हज़रत पर एक गिरोह की तरफ से तोहमतें क्यों लगाई गईं। और दिक्कत नज़र से तहकीक करने वालों ने समझा है कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ मुखालफत की लहर सियासी ज़रूरत की वजह से थी, जो बनी उमैया की मौलाए कायनात के मकाम व मर्तबे की मुखालफत से पैदा हुई। क्योंकि सिर्फ अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक ही नहीं, बल्कि हर वो शख्स जो तारीख़ इस्लाम में किसी तरह भी अमीर अलमोमिनीन अलैहिस्सलाम से क़ुर्बत रखता है, वो ऐसे हमलों से नहीं बच सका। अब ईसाई मुसन्निफ़ जॉर्ज जुर्दाक का बयान ज़िक्र करेंगे। मौलिफ ने शेख बदहा की खिदमत में अकीदत के गुलदस्ते और मदह व सना के तोहफे पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, तो रसूल अल्लाह की किफ़ालत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले हुई। रसूल अल्लाह अबू तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, शफ़क़त और हुस्ने तरबियत के साए में परवान चढ़े। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का इंतखाब इसलिए किया था कि वो अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हालात और जज्बात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। उनकी औलाद में से मोहब्बत का जज्बा, यानी अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की औलाद में से मोहब्बत का जज्बा अक्सर के दिल में मौजूद था, मगर वो जज्बा जो अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दिल में था, वो किसी और के पास ना था। और तरबियत के मामले में मोहब्बत के जज्बात ज़्यादा मौसर साबित होते हैं। यही वजह है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया। और इसमें शक नहीं कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम एक जलील कदर, अज़ीम उल मर्तबत शख्सियत के मालिक थे। ऐसा मालूम होता है जिस दिन खुदा ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में नबी को नबूवत के लिए मुंतखब किया, उसी दिन जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को नबी की किफ़ालत और तरबियत के लिए मुंतखब कर लिया। हज़रत अबू तालिब ने अपनी क़ुव्वत फ़िक्र व नज़र की बिना पर नबी में इस बात का इदराक कर लिया था जिसे कोई नहीं समझ सका। अगर अबू तालिब अलैहिस्सलाम के नफ्स मुबारक की मानवियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफ्स मुक़द्दस में नज़र आए, तो कोई ताज्जुब नहीं। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने किसी लम्हे इस बात को फरामोश नहीं किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख़ानदानी इखलाक के नहायत कामिल तरीन फ़र्द हैं, और वो एक जावेदानी शक्ल हैं जिसमें अब्दुलमुत्तलिब, अब्दिल्ला और अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तस्वीरें बयक वक्त उजागर होती हैं। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पहले शख्स थे जिन्होंने इस्लाम में रसूल अल्लाह की मदद की। उनकी तबलीगी नशरो अशात के लिए अशआर नज़म किए। जिस वक्त अबू तालिब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, नबी ने महसूस किया आज एक अजीम सुतून मुनहदिम हो गया, बड़ी ताकत ख़त्म हो गई। यही एहसास इस बात की वाज़ह दलील है कि नबी का अबू तालिब अलैहिस्सलाम से बड़ा मुस्तहकम रूहानी ताल्लुक़ था। अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस एहसास का मंशा फ़कत ये था कि हज़रत अबू तालिब के मरने से एक जानिसार कम हो गया, एक दिफा करने वाला उठ गया, जैसा कि खुद उनके कौल से भी जाहिर होता है कि जब तक चचा जिंदा रहे, कुरैश को नज़र भर कर देखने की जरूरत ना हो सकी। मगर इस गहरे गम व हुज़ुन की वजह क्या थी जो हर वक्त हुजूर के दिल पे छाया रहता था, जबकि उन्हें इस बात का यकीन था कि चाहे सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, मेरी रिसालत कामयाब होकर रहेगी। हकीकत ये है कि हुजूर के इस मुस्तकिल गम व हुज़ुन का सबब ये था कि आप एक बहुत बड़ा खला महसूस कर रहे थे। अपने सामने एक बहुत शफीक और अज़ीज़, बड़ी अजीज़ हस्ती को गायब पा रहे थे, या यूं कहा जाए कि अपनी ज़ात में एक कमी का एहसास कर रहे थे, इसलिए कि आपका माजी और हाल सब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ही से वाबस्ता था। वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली अलैहिस्सलाम में मोहब्बत और अखुव्वत के ताल्लुकात बराबर जारी रहे। پیغام الہی کی اشاعت میں دونوں برابر سے کوشاں رہے. اس اتحاد و اتفاق کی بنیادیں اسی وقت قائم ہوئیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو دیکھا تھا, اور علی علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا. ظاہر ہے جب ایسے تین افراد ایک گھر میں جمع ہو جائیں تو عظمت کا کیا عالم ہوگا. یہ تھا عیسائی مصنف کا بیان. اس کے علاوہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وہ اشعار اقرار رسالت کے ثبوت میں کافی ہیں جن میں اسلام کی صداقت, دین کی حقانیت اور نبی کی رسالت کا واضح لفظوں میں اعتراف کیا ہے. یہ اشعار کثرت سے ہیں. علامہ ابن ابی الحدید نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کافی اشعار نقل کرنے کے بعد کہا کہ ابو طالب علیہ السلام کے وہ اشعار جو ان کے ایمان و تصدیق رسالت پر روشنی ڈالتے ہیں وہ 3000 سے زائد ہیں, اور یہ اشعار تواتر کے طور پر نقل ہوتے آئے ہیں. اگر متفرق طور پر ان میں تواتر نہ بھی ہو مگر مجموعی طور پر بہرحال متواتر ہیں, کیونکہ وہ مجموعی طور پر ایک ہی امر کی نشاندہی کرتے ہیں جو قدر مشترک ہے, اور وہ قدر مشترک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا اعتراف ہے. اللہ کی رحمتیں, برکتیں, درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار پر. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار ان کے عقائد و نظریات کی پوری ترجمانی کرتے ہیں, اور مورخین نے انہیں صحت اور وثوق کے ساتھ نقل کیا ہے. کچھ اشعار یہ ہیں کہ جب کفار قریش نے پیغمبر کی طرف غلط بیانی کی نسبت دی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر کو مخاطب کر کے یہ اشعار کہے کہ آپ امین اور اللہ کے امین ہیں جس میں جھوٹ نہیں, صادق القول ہیں, بری باتوں سے پاک ہیں, آپ وہی اللہ کے رسول ہیں جن کا ہمیں علم ہے, اور آپ ہی پر تو رب العزت کی طرف سے قرآن نازل ہوا. اور جب قریش نے ابو طالب علیہ السلام سے یہ کہا کہ پیغمبر کو خاموش کیجئے ورنہ ہم سختی کریں گے, تو آپ نے یہ اشعار کہے, خدا کی قسم جب تک میں زیر زمین دفن نہ کر دیا جاؤں قریش اپنی جمعیت کے ساتھ آپ کے قریب پھٹک نہیں سکتے, بے کھٹک اللہ کے احکام بیان کیجئے اور اس طرح خوش و خرم رہ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے. آپ نے مجھے دعوت اسلام دی اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں, اور آپ پھر آپ امین بھی تو ہیں. مجھے یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین دنیا کے تمام ادیان سے بہتر ہے. اور جب شیب ابی طالب میں پناہ لی گئی ہے تو اس وقت 120 اشعار کا ایک طویل قصیدہ کہا ہے حضرت ابو طالب نے, اور اس قصیدے کے چند اشعار یہ ہیں کہ فرماتے ہیں, خانہ کعبہ کی قسم تمہارا خیال غلط ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دبا دیے جائیں گے اور ان کے سینہ سپر ہو کر نیزے اور تیر نہیں چلائیں گے. ہم اس وقت تک انہیں دشمنوں کے حوالے نہیں کریں گے جب تک ان کے سامنے مر نہ جائیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھول نہ جائیں. میں نے دل و جان سے ان کی حفاظت کی اور اپنے دست و بازو اور سینے کے زور سے ان کا دفاع کیا. پروردگار عالم اپنی نصرت سے ان کی دستگیری کرے, اور اس دین کو جو سراسر حق ہے اور باطل کی آمیزش سے پاک ہے غلبہ دے. ابن حشام نے اس قصیدے کے متعدد اشعار درج کرنے کے بعد تحریر کیا ہے کہ ایک سال اہل مدینہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط میں مبتلا ہو گئے. پریشان حال پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے, التجا کی, دعا فرمائے اللہ بارش برسائے. پیغمبر نے دعا کی, ابھی دعا کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ بارش برسنے لگی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی یاد آ گئی اور فرمایا کہ اگر آج ابو طالب علیہ السلام زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے. ایک شخص نے کہا کہ شاید آپ کو ان کا یہ شعر یاد آ گیا جو انہوں نے آپ کے بارے میں کہا تھا, وہ روشن چہرے والے جن کے روح مبارک کا واسطہ دے کر باران رحمت طلب کی جاتی ہے, جو یتیموں کی ڈھارس, بیواؤں کا سہارا ہیں. حضور نے فرمایا, ہاں میرا اشارہ اسی طرف تھا. پیغمبر کے قلب مبارک پر ابو طالب علیہ السلام کی محبت اور خلوص کے نقوش اتنے گہرے تھے کہ وہ کسی لمحے حضرت ابو طالب کو فراموش نہیں کرتے تھے, اور زندگی کے آخری لمحوں میں بھی ان کی یاد تازہ رہی. بلاذری نے لکھا ہے کہ جب حضور پر مرض کی شدت ہوئی اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضور کی یہ حالت دیکھی تو کہا, میری کائنات آپ پر فدا. اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یہی شعر پڑھا. حضرت نے یہ شعر سن کر آنکھیں کھول دیں اور فرمایا, یہ تو میرے چچا ابو طالب کا شعر ہے. حضرت अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ईमान इन अशआर पर ही मुनसिर नहीं बल्कि इससे बढ़कर अहमियत उन अक़वाल और इरशादात की है जो हुजूर और आइम्मा किराम ने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान के सिलसिले में फ़रमाए हैं। ये इरशादात दो एतबार से अहमियत रखते हैं। एक ये कि आइम्मा किराम अलैहिस्सलाम हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की औलाद उन्हीं के ख़ानदान से हैं और हर शख्स की ज़िंदगी का वर्क उसकी औलाद उसके ख़ानदान के सामने खुला होता है और वो ना उनसे अपना अकीदा मख्फी रख सकता है और ना आमाल। दूसरे ये कि शरई नुक्ता नज़र से भी आइम्मा किराम अलैहिस्सलाम के इरशादात सनत करार पाते हैं। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले अच्छी तरह जानते थे कि उनका भतीजा मकाम नबूवत तक पहुँचेगा। मौर्रखीन ने लिखा है कि जिस सफ़र में अबू तालिब अलैहिस्सलाम कुरैश के काफ़िले के साथ शाम गए और नबी को भी साथ ले गए थे, इस सफ़र में उन्होंने नबी करीम से बहुत सी करामात मुशाहिदा की। उनमें एक वाकया एक राहिब का भी कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का काफ़िला एक राहिब के गिरजे के करीब से गुज़रा जो कदीम अरसे से एक गिरजे में मशगूल इबादत था, तो राहिब की नज़र काफ़िले वालों में से रसूल अल्लाह पर ठहर गई और उसने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कुछ सवाल जवाब किए। मुख्तसर ये कि उसने कहा कि ये बच्चा वही पैगंबर है जिसकी नबूवत और रिसालत की आसमानी किताबों में खबर दी गई है और मैंने इसकी तमाम खसूसियात किताबों में पढ़ी हैं। अहले सुन्नत के आलिम शहरिस्तानी और दूसरे उलमा की नकल के मुताबिक मक्के में एक साल सख्त कहस्ताली ने लोगों को घेर लिया था तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उनके भतीजे को रसूल अल्लाह को जो कि भी शीर ख्वार थे लाया जाए और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कि शीर ख्वार थे कपड़े में लिपटा हुआ लाकर अबू तालिब अलैहिस्सलाम की आगोश में दिया गया तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम उनको लेकर खाने काबा के सामने खड़े हो गए और तिफले शीरख्वार को 3 मरतबा आसमान की तरफ बुलंद किया और हर मरतबा कहते परवरदिगारा इस बच्चे के हक का वास्ता हम पर बरकत वाली बारिश बरसा। कुछ देर न गुजरी थी कि उफक के किनारे से बादल का टुकड़ा नमोदार हुआ और आसमान मक्का पर छा गया, शदीद तरीन बारिश बरसी। शहरिस्तानी लिखते हैं कि ये वाकया अबू तालिब अलैहिस्सलाम के अपने भतीजे की नबूवत और रिसालत से आगाही पर दलालत करता है और अबू तालिब अलैहिस्सलाम का पैगंबर पर ईमान रखने का सबूत भी है। और अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने बाद में ये अशआर उसी मुनासबत से नबी के लिए कहे थे कि वो ऐसे रोशन चेहरे वाले हैं कि बादल उनकी खातिर बारिश बरसाते हैं, वो ऐसी मीज़ान अदालत हैं कि जौ के एक दाने के बराबर भी इधर उधर नहीं करते और दुरुस्त कामों का ऐसे वज़न करने वाले हैं जिसमें किसी शक व शुबे का खौफ नहीं। शहरिस्तानी के अलावा और दूसरे बहुत से मौर्रखीन ने भी इस वाक़े को नकल किया है। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान की गवाही पर मौजूद बहुत दलाइल हैं जिनमें से कुछ का मुख्तसरन जिक्र किया और इस दुआ के साथ गुफ्तगू को तमाम करते हैं कि खुदा इस कलील और नाकिस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन वालिहि तय्यबीन अत्ताहरीन।